परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा जमुना माई की जय। तुलसी भक्ति देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। पंजाबी बाग भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु एंड गौरंगा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवा पाश्चात देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री श्री राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव मंदिर स्कान पंजाबी बाग में सोमवार के भक्ति वृक्ष के भक्तों के समागम वाले सत्संग में। गत सोमवार को भक्ति योग भक्ति योग भक्ति के द्वारा भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, उसको भक्ति योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़ना या संबंध स्थापित करना, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है भक्ति के द्वारा, उसको भक्ति योग कहते हैं। और 12वां अध्याय भगवद गीता का भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध अध्याय है। कभी चर्चा इस बात की हुई है कि किसी भी अध्याय का कोई नाम महाभारत में नहीं है, वहां तो अध्याय वो क्या है भीष्म पर्व में 25वें से 43 अध्याय नंबर 25, 26, 27 ऐसे लिखा है, किसी अध्याय का कोई नाम नहीं है। और किसी आचार्य ने कोई अध्याय के नाम के ऊपर टीका भी नहीं की है। एक पर्यावाची अध्यायों के नाम ऐसे समय के साथ चल पड़े हैं तो चलते रहे, तो किसी अध्याय में कोई विशेष एक शब्द होता है उसको लेकर उस अध्याय का नाम ऊपर दिया गया है, शीर्षक क्या कहते हैं शीर्षक। तो 12वां अध्याय भक्ति योग है। और गत रवि सोमवार को हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि 11वें अध्याय में फिर भी प्रचार की दृष्टि से अपने आप को मन को संतुष्ट करने के लिए ऐसे समझना चाहिए कि 9वें अध्याय का गुह्यतम ज्ञान है। 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान है, राजगुह्यम राज विद्या राजगुह्यम, तो गुह्यतम ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये गुह्यतम ज्ञान है। तो तीन स्तर ज्ञान के हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, तो एक से दूसरा ऊपर का स्टेज। तो गुह्यतम ज्ञान, गुह्य ज्ञान है आत्मा, शरीर और आत्मा अलग है, ये गुह्य ज्ञान है। ये दूसरे अध्याय भगवद गीता में इसकी शुरुआत होती है। 7वें अध्याय 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान की बात की गई है कि आत्मा केवल इतना जानना कि शरीर से आत्मा अलग है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, फिर परमात्मा की जानकारी भी आवश्यक है। तो अपने आत्मा के ज्ञान के बाद भगवान के विषय में जानकारी, ये गुह्यतर ज्ञान है, उसके विभूतियों के बारे में, अन्य अन्य चीजों के बारे में, ये गुह्यतम ज्ञान है। भगवान में मन लगाना, भगवान का भक्त बनना, प्रेम करना भगवान से, गुह्यतम ज्ञान है भगवान से प्रेम। राज विद्या राजगुह्यम, राजगुह्यम का मतलब है भगवान से प्रेम भक्ति का संबंध स्थापित करना। तो मानो कोई पूछे कि मन मुझ में लगाओ, भक्त मेरे बनो, नमस्कार मुझे करो, पूजा मेरी करो, तो प्रश्न उठे, साधारण ये प्रश्न उठेगा, भाई क्यों आपकी पूजा की जाए, क्या विशेषता है आपकी, कोई चमत्कार है तो नमस्कार करें। तो संसार में चमत्कार को नमस्कार होता है, तो 10वें अध्याय में भगवान के चमत्कार, विभूति का अर्थ अपुलेंस जब दिया, तो अपुलेंस का अर्थ है चमत्कार, भगवान की विभूतियां, जलवा, उर्दू में कहते जलवा। तो भगवान ने अपने विभूतियां बताई कि ये मेरी विभूतियां हैं। जहां भी आपको कोई विशेष बात दिखने में आए और आश्चर्य लगे, समझ लो कि ये मेरी विभूति है। और अर्जुन ने ये पूछा इसलिए था कि हर समय आपका स्मरण रहे, हर वक्त मन आप में लगा रहे, उसके लिए क्या साधन है। तो भगवान ने बताया, ये सब विभूतियों को देख के मेरे स्मरण आपको हर वक्त आना चाहिए। जैसे घर में छोटे बच्चे का मोजा पड़ा हो और चप्पल पड़ा है, तो उसको देख के वो बच्चा याद आ जाता है ना, उसका कपड़ा देख के बच्चा याद आता है। तो कोई चीज भी भगवान से संबंध देखने में आएगी तो भगवान याद आ जाएगा। तो ऐसे हर समय, और बड़ा अद्भुत शब्द है 10वें अध्याय में, देखा 10वें अध्याय दो शब्द है, ऐश्वर्य पश्यमे योगम ऐश्वर्य, जब अब समाधि में हो तो मुझसे जुड़े हुए हो, लेकिन चलते फिरते खुली आंख से घूमते हो तब भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हर समय तुम्हारे को मेरा दर्शन हो रहा है मेरी विभूतियों के रूप में, वो तुम्हें मेरी याद दिलाती रहती है। तो दो शब्द हैं इसमें, और विशेष रूप से दसवें अध्याय में एक अलग ही योग का वर्णन है, अविकंपन योग। इस योग का नाम किसी योग शास्त्र में है ही नहीं, पतंजलि के पास भी नहीं है, किसी योग संहिता में है नहीं। अविकंपन योग, दसवें अध्याय में शब्द आता है अविकंपन योग। ये योग तेरा डावाडोल नहीं होगा, इसमें कंपना नहीं आएगा। समाधि में हो या घूमते फिरते हो, दुकान पे हो या मकान में हो, काम पे हो या घर में हो, मंदिर में हो या बाहर हो, तेरा योग डावाडोल नहीं होगा। अविकंपन मतलब स्थिर रहेगा, क्यों, जहां ऐसे नजर करोगे तो तुम्हारे को कोई चीज नजर आएगी उससे तुम्हारे को मेरी यादगिरी आ जाएगी। तो अविकंपन योगे न, ये दसवें अध्याय में एक शब्द आता है विशेष रूप से। तो भगवान ने अपनी विभूतियां बताई, अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित हो, सब आपकी विभूतियां हैं और भी कुछ बताइए, भगवान ने कितनी बताऊं, इसका कोई अंत नहीं है, विस्तार से बताने की क्या जरूरत है। एका अंशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से ये पूरा जगत स्थित है, एक अंश से। मानो भगवान ने उदाहरण का कहा, देखो ये एक बाल काट के ऐसे मेरे इसके अंदर पूरा सारा जगत है, देखो इतना ही ये मेरी विभूति है कि एक अंश में ये पूरा जगत समाया हुआ, और तुमको क्या क्या बताऊं। यह दसवां अध्याय समाप्त हुआ तो अर्जुन ने बुद्धिमानी से पूछा कि भगवान कृपा करके, बड़ा आपने अनुग्रह किया है मेरे ऊपर, और अब आपने जो विभूतियों को चर्चा की है ना, कि आपकी ये सारी विभूतियां हैं, जगह जगह जो जो चमत्कार दिखते हैं, ये सब आपका जलवा और कमाल है, तो अगर आप इसको गलती नहीं मानो मेरी, अथवा मेरा हुज्जत नहीं मानो और मेरे को इसके लायक समझो, तो मैं इसको देखना चाहता हूं। बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी सरलता से अर्जुन भगवान से एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहा है कि मैं, आपने जो विभूतियां कही है ना, आपने कहा रुद्र आदित्य वस्व ये सब मुझ में है, सूर्य चंद्र ये सब मुझ में समा है, तो ये क्या मैं देख सकता हूं क्या, यति शक्य, अगर मुझे आप इसके योग्य समझते हो, दृष्टुम इच्छामि, मेरे देखने की इच्छा है, तो उनका तथास्तु ददामि दिव्यम दिव्य दृष्टि, आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, आप मेरे इस योग और ऐश्वर्य को देखो, मेरे इस योग और ऐश्वर्य को देखो। इसमें क्या क्या देखने में आएगा, बोला एक तो मेरा आपको विराट रूप नजर आएगा, जिसके इस सारे जगत के अंदर जो कुछ भी है वो मेरे ऊपर आलंबन किया हुआ है, मेरे ऊपर स्थित है, और दूसरा इस रूप में एक चीज है जो किसी ने पहले नहीं देखी है, 11वां अध्याय के विश्व रूप में, विश्व रूप तो माँ यशोदा ने दो बार देखा, विश्व रूप तो कौरवों की सभा में भी दिखाया गया, लेकिन ये विश्व रूप विलक्षण इस बात में है कि एक तो ये बहुत बड़ा संपूर्ण रूप से विश्व रूप का दर्शन है, लेकिन उसके साथ एक और रूप का दर्शन इसमें जो और किसी रूप में नहीं था, वो है काल रूप। विश्व रूप के साथ भगवान ने अपने काल रूप का दर्शन कराया, उस काल रूप के दर्शन में दोनों सेनाओं के योद्धों को अर्जुन ने भगवान के मुख में दांतों के बीच में पिसते हुए देखे, चूर्णतय उत्तम अंगी है, सबके अंग चूर्ण होते हुए देखे, और उसके बाद भगवान ने कहा तस्मात, इसके बाद उत्तिष्ठ यशो लभस्व निमित्त मात्र भव सव्य साचन, उठो तुम केवल हाथ हिलाओ, काम मैंने पहले कर दिया है, यश तुमको मिलेगा। ये और किसी विश्व रूप में किसी को भगवान इससे पहले नहीं दिखाया था, काल रूप, कि भगवान कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो, मैं काल स्वरूप हूं, सारे लोक को क्षय कर देता हूं, ये पहले किसी ने नहीं देखा था। काल भगवान का एक रूप है जो अव्यक्त रूप है, दिखता नहीं है। पांच विषय जो भगवद गीता में, उसमें एक विषय काल है, और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा काल क्या रूप है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और कर्म के विषय में तो सुलभ मिल जाएगा, लेकिन काल के विषय में बहुत ढूंढने के बाद 10 लाइनें भी आपको मिलेंगी नहीं। कभी इसके ऊपर ठीक गहन चिंतन करके भागवत से काल क्या है, अभी हम प्रवचन दे दिया ना, प्रवचन खत्म हो गया, प्रवचन रिकॉर्ड हो गया, हम यहां नहीं है, कहीं और चले गए। इसको आप टैप को चलाओगे तो वो सब आवाज आने लगेगा। ऐसे भगवान नहीं है, लेकिन काल की पट्टी के ऊपर सब कुछ भरा हुआ है। जैसे जैसे पट्टी चलती है ना, पुराने जमाने में कैसेट में पट्टी चलती थी ना, वो जैसे चलेगी ऐसे काल, वो काल का रूप है, हर एक चीज को प्रदर्शित करता जाएगा। ये भगवान का अव्यक्त रूप है। तो इसकी डेफिनेशन भी कभी हमको लिखनी चाहिए, कि कई कई बार हम कहते हैं भगवद गीता में 5 विषय हैं, लेकिन काल के ऊपर कभी चर्चा हमने ठीक अपने, हम भी उसमें संतुष्ट नहीं है कि काल का अर्थ क्या है, तो उसके ढूंढना चाहिए अच्छी तरह से। तो कुछ कुछ लाइनें हमने लिख के रखी थी, कभी इसको फिर देखेंगे। तो भगवान के काल रूप का दर्शन भी 11वें अध्याय में है, और अर्जुन को बहुत व्याकुल देखकर भगवान ने अर्जुन को कहा तुम ज्यादा व्याकुल नहीं हो, तुमने देख लिया ना, बोला ये तो देख लिया, लेकिन इससे मुझे बहुत भय लग रहा है, अब चतुर्भुज रूप में आप मुझे दर्शन दे दीजिए। तेने चतुर्भुज रूपेण शंख गदा चक्र लिया हुआ, आपके नारायण स्वरूप विष्णु स्वरूप का दर्शन मुझे करा था, तो भगवान ने विष्णु स्वरूप का दर्शन करा दिया। और उस दर्शन कराने के बाद भगवान अपने श्याम सुंदर जो कृष्ण वसुदेव का रूप है उसमें प्रकट हो गए, और तब संजय ने बोला अब भगवान अपने स्वयं रूप में प्रकट हो गए हैं। और उस संजय के बाद एकदम स्वयं अर्जुन कहता है इदम सोमयम मानुषम रूपम जनार्दन, जनार्दन अभी जो तुम्हारा ये मानुष जैसा रूप है इसको देख के मुझे बहुत आनंद आ गया, अब तो मेरी प्रकृति वापस मेरा स्वभाव में मैं स्थित हो गया, अब मेरा भय खत्म हो गया। तब भगवान बोलने लगे, बोला इसको देखना बहुत मुश्किल है, देवता भी कांक्षति बहुत बड़ी आकांक्षा रखती है इसको दर्शन करने की। और फिर ये श्लोक भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बोल दिया, भक्त्या तो अनन्य शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, ज्ञातुम मेरे बारे में ज्ञान, दृष्टुम मेरा दर्शन, प्रवेशतुम और मुझ में प्रवेश, ये तीनों भक्ति के द्वारा संभव है केवल। और ये कहने के बाद अंतिम श्लोक में भगवान ने भक्ति का सूत्र बताया, ये गत सोमवार को हमने चर्चा की थी, 55 श्लोक 11वें अध्याय का भक्ति का सूत्र है, मत कर्म कर्ण मत परमो मत भक्त, ये 3 बातें भगवान ने अपने लिए कही है, कर्म मेरे लिए करो, मुझको ही सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन का लक्ष्य मानो, मेरा ही आश्रय लो, श्रद्धा भी मुझ पर रखो, मद भक्त और मेरे भक्त बन के प्रेम भी मुझसे ही करो, काम भी मेरे लिए करो, मुझको ही मत परम मुझको ही सर्वश्रेष्ठ मानो, मेरा ही आश्रय लो और प्रेम भी मुझसे करो। और 2 बातें संसार के लिए कही, संग वर्जिता और निर्वैर, संसार के संग से अपने आप को अलग कर दो, वर्जित का मतलब अलग कर दो, लेकिन वैर किसी से मत रखो। तो ये 5 बातें कहने के बाद अर्जुन ने 12वें अध्याय में पहला प्रश्न पूछा, इसके ऊपर भी गत रवि सोमवार को चर्चा हुई थी। अर्जुन कहता है एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परियुपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्मह। इसमें अर्जुन का प्रश्न ये है कि 2 पक्ष रखता है, एक पक्ष भगवान की साकार सगुण उपासना,
साक्षात श्री कृष्ण जैसे द्विभुज रूप में दो हाथों वाले रूप में अर्जुन को दिखते हैं, सोमयम जनार्दन, इसकी उपासना करना। अथवा दूसरा पक्ष है अक्षरम निर्देशम ना, अव्यक्तम, जो अक्षर ब्रह्म है, निराकार भगवान है, जो अव्यक्त है, दिखता नहीं है, उसकी उपासना करना। इन दोनों उपासनाओं में योग वित्म कौन सी है, युक्तत्म कौन सी है? फिर ये वही आया जैसे पहले गुह्यतम ज्ञान था, ये योग वित्म है। तो योग वित्त, योग वितर, योग वित्म, तो तीन स्तर इसके भी हैं। तो दोनों में से सर्वश्रेष्ठ उपासना कौन सी आप मानते हैं भगवान? अपना मत दीजिए, अपनी राय दीजिए। तो भगवान का उत्तर है, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। दूसरे श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं पहले पक्ष का, भगवान की सगुण उपासना, साकार उपासना, भगवान के स्वयं रूप की उपासना के विषय में भगवान कहते हैं। श्री भगवान वाच, बोलो, मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धयो परोपेता ते मे युक्तत्म मतः। तो भगवान का उत्तर क्या है? मई आवेश मनो ये माम, इसमें ये शब्द को पहले समझना चाहिए। ये का मतलब कोई भी, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूदर हो, चंडाल हो, कोई भी हो, ये भगवान की भगवत का भगवता, ये भगवान का वचन सिद्ध करता है। भगवान जब बोलेगा तो सबके लिए बोलेगा, किसी से पक्षपात नहीं करेगा। कोई भी किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में मेरे पास आ जाए तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। ये लास्ट टाइम भी कहा था, जैसे भक्त का वर्णन होता है, भक्ति का वर्णन होता है, तो उसका उदाहरण देते हैं, जैसे राजा की सेवा करने का सबको अधिकार है, झाड़ू निकालने वाला भी राज की सेवा करता है, उसको भी अधिकार है, झाड़ू के द्वारा करे, किसान खेत के द्वारा करे, कपड़ा बुनने वाला कपड़े के द्वारा करे, रंग वाला रंग के द्वारा करे, तो हर एक व्यक्ति राजा की सेवा कर सकता है। कोई भी राजा की सेवा से तो बेमुख हो नहीं सकता है, सबको अधिकार है। भक्तों, भक्ति के लिए अधिकार किसको? यदा नृप, जैसे राजा के लिए सबको सेवा करने का अधिकार है, ऐसे भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। ये संस्कृत की शैली है कहने की, भक्तों यदा यथा नृप, जैसे राजा के कोई भी प्रशंसा चाकरी सेवा कर सकता है, कोई भी राजा की सेवा से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ऐसे भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। ये मई आवेश मनः, मई आवेश मनो ये माम, मई माम दो शब्द भगवान ने कह दिया और बीच में कह दिया मन आवेश। तो मन को आविष्ट करना है। आविष्ट किसको कहते हैं? किसी चीज का जब आवेश होता है ना, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, उस आवेश को प्रधानता हो जाती है, इसमें क्रोध का आवेश हो गया तो क्रोध ही दिखेगा, हम अपने आप को ही भूल जाएंगे। एक दूसरा आवेश का सरल उदाहरण यह है, जब कोई अपन अभिनेता अभिनय करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं स्टेज के ऊपर, तो जो व्यक्ति जिसका पार्ट अदा करता है, जो रोल करता है, कपड़े भी वैसे पहनता है, बोलता भी उस जैसा है, उसी जैसा ही है, और स्टेज के ऊपर उसका पूरा अभिनय कैसा होता है, जो उसको पार्ट दिया गया उसमें आवेश हो जाता है, उसी उसी आवेश में रहता है, तो उस वक्त तो अपने आप को कहेगा कि भाई रावण का रोल कर रहा, तो कहेगा दशानन को नहीं जानते हो तुम, कौन हूं मैं, तो अपने आप को रावण। वो पुराने जमाने में ऐसे ड्रामा हो रहा था, तो कोई दूध बेचने वाला कोई बाहर बेचता था, मोटा था ना, तो उसने रावण का रोल किया, तो सामने हनुमान गए तुम कौन हो, बोले दूध बेचने वाले हो, जानते नहीं हो, वो रावण भूल गया वो ड्रामे वाली बात भूल गया, उसको तो वही याद आया जो असली था पहले से, वो ड्रामे वाली आवेश ने उतर गया थोड़ी देर में। तो आवेश का भाव ये होता है कि अपने आप को भूल जाए और जो अभिन्न करता है उस अभिन्न में पूर्ण रूप से, तो वो तो ड्रामे वाला सिर्फ ड्रामे करेगा, नीचे उतर का आएगा तो वो अभिनय नहीं करेगा, लेकिन भक्त की ये आदत बन जाती है कि उसका मन भगवान में आविष्ट ही रहता है, तो उसकी आविष्ट का मतलब है कि वो अपना नेचर बना लेता है, अपना स्वभाव बना लेता है। भक्ति भगवान में मन आवेश करने का मतलब है कि स्वभाव बन जाना। देखो भक्ति रागात्मिक है, रागात्मिक भक्ति है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है आपके बेटे से आप प्रेम करते हैं ना, हर वक्त आपका बेटा याद तो नहीं है आपको, आप दुकान में जाते हो तो दुकान का काम करते हो, सो जाते हो तो आपको कोई याद नहीं है, लेकिन उससे बेटे का प्रेम खत्म तो नहीं हो जाता है, प्रेम तो वैसे का वैसे रहता है, तो वो प्रेम खत्म नहीं हो सकता है, वैसे का वैसे रहता है कि नहीं रहता है, चाहे आप दुकान पे हो, चाहे आप नींद में हो, चाहे आप कारोबार कर रहे हो, लेकिन जैसे ही बेटे की याद आई अथवा उसकी शक्ल देखी अथवा उसकी कोई चीज आई, तो वो प्रेम जैसे है जैसे वैसे कैसे प्रकट हो जाएगा, वो कहीं छुप नहीं जाता है, सोने से प्रेम खत्म नहीं होता है, दूसरे काम में लगने से प्रेम खत्म नहीं होता है, मन तो दुकान में काम में लगा है लेकिन प्रेम बच्चे का कम नहीं हुआ, इसको बोलते हैं रागात्मिक। तो भक्त का प्रेम भगवान के प्रति रागात्मिक हो जाता है, काम वो कोई भी करता है लेकिन स्वाभाविक भगवान के प्रति उसकी प्रेम की धारा बहती ही रहती है, उसको बोलते हैं मई आवेश मनो, मन मुझ में आविष्ट हो। तो भगवान में मन आविष्ट कैसे हो ये बात समझनी चाहिए, कहने की नहीं, कैसे आविष्ट हो। रात को सोते समय प्रभुपाद की शिक्षा ये है कि दसम स्कंद श्रीमद् भागवत के कृष्ण परम पुरुष भगवान को कुछ पढ़ना चाहिए, तो क्या है, चित्त में भगवान का चरित्र बसेगा और उसको लेके सोएंगे, तब संकल्प ये करेंगे 4 बजे हमारी आंख खुलनी चाहिए, क्यों, भगवान का मंगल दर्शन करेंगे, तो हमारा सोना भी भक्ति हो गई, सोने से पहले भगवान का चिंतन किया और ये संकल्प किया कि उठ के भगवान का दर्शन करने जाएंगे। अब उठ के हम वर्ष कर रहे हैं तो भी हमारा मन है मंगल आरती जाना है, तिलक लगा रहे हैं, शंख तो नहीं बजा अभी तक, तो हमारा चित्त कहां लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है। अब मंगल आरती पूरी हो गई तो जप किया, जब पूरा हो गया दर्शन आरती के लिए तैयार हुए, अब ये भक्त हो गए जो मंदिर में आए, जो मानो बाजार में जा रहा है फूल लेने, अच्छे फूल लाने चुन के, आज तो मेरे को भगवान के लिए मुकुट में लगाने के लिए फूल, तो गुलाबी ढूंढ के ढूंढना पड़ेगा, तो जाते हुए फूल लेने फूल जा रहा है, रोक के ऑटो को जा रहा है, लेकिन मन में भगवान के मुकुट में फूल लगेगा, ये माला फूल की, तो फूल के विषय में, भगवान के विषय में फूल चढ़ेगा ये सोचता हुआ जा रहा है। सामान लेने जा रहा है सब्जी मंडी में, आज तो भगवान के लिए 56 भोग बनेगा, आज तो आज ये तैयारी करनी है, अथवा खेत अपना है, प्रभुपाद ने तो एक जगह लिखा है, पुराने जमाने में सब लोगों के पास थोड़ी जमीन हुआ करती थी और सब मोल, अरे इस सीजन में तो हमको आम बहुत अच्छे होंगे तो भगवान का भोग लगेगा, तो खेती करने से लेके जब तक आम पकता तब का भगवान का चिंतन होता रहता है, तो हर काम जो भी करता है लेकिन उसमें भगवान संपूट हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मन आविष्ट। भगवान का सौंदर्य माधुर्य गुण रूप लीला इसमें मन हर समय आविष्ट रहे। ये बगैर पिए का नशा है, ये भगवान के नाम का नशा है, भगवान के दर्शन का आदत पड़ जाती है। जैसे लोगों को चाय की आदत है, चाय नहीं मिले ना तो आंख नहीं खुलती है, भगवान का दर्शन नहीं हो तो आंख नहीं खुले। ये ऐसा जीवन में इसको बोलते हैं स्वभाव बन जाना। भक्ति एक स्वभाव है, एक नेचर है, वो अगर बन जाता है तो फिर कोई ये फिर सहज है, बहुत नेचुरल है, उसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे भक्त को कोई आप चीज दो तो एकदम कह रहे इसको भोग लगाना है, तो याद क्या आया भगवान, चीज देखते ही भगवान याद आया। कोई सुंदर मानो कोई सुंदर किसी का चेहरा देखे, कितना भगवान ने कलाकारी से बनाया है, उसको देख के भगवान याद आना चाहिए, इसको बनाने वाला कितना महान है। तो जो भी चीज दिखे उस वक्त भगवान की स्मृति बनी रहे, ये माई आवेश का अर्थ है, मन भगवान में आविष्ट रहे तो फिर अपनी कुछ चिंता नहीं रहेगी। मई आवेश मनो ये माम, जिस बाग जिसका भी मन मुझ में आविष्ट है, नित्य युक्ता उपासते। नित्य का अर्थ हो गया समय, हर समय। नित्य का मतलब प्रतिदिन, रेगुलरिटी की बात है, नित्य का मतलब रेगुलरली, ऐसे नहीं एक दिन किया चार दिन छोड़ के फिर एक दिन किया, नहीं, नित्य का मतलब है हर रोज प्रतिदिन नेम से। ऐसे भी भक्ति का एक स्वभाव है कि आसन भी उसी जगह रोज लगे, समय भी वही हो, तब बैठ के भगवान का भजन करे तो फिर वो सिद्ध जगह भी सिद्ध हो जाता, आसन सिद्ध हो जाता है अपने आप, उस जगह का भी प्रभाव पड़ने लगता है वहां बैठ बैठ के करने से। जैसे 4:30 बजे की मंगल आरती है, इसमें कभी हम कोई कभी चेंज किया क्या, नहीं किया ना, क्यों कि टाइम फिक्स है। कहा उस दिन किसी के घर में हम थे, कोई बहुत बड़ा नेता था, एमपी था, कुछ ऐसे था, 4-5-7 बार से आया, किसी का साधक था, किसी का जिज्ञासु था, बोला ये माला जब के ऐसे नेम से टाइम से करने की जरूरत नहीं है, हर समय भगवान से जुड़े रहे ये अच्छी बात है। फिर ऐसे भी कहा कि आप लोग जब नाम जपते हैं कहते हैं हमने 16 माला कर ली, तो थोड़ा आपको अहंकार हो जाता है, हम 16 माला कर ली, फिर गिन के करते हो, ऐसे कुछ चर्चा आपस में हो रही थी। हमने बोला फिर जितनी स्कूल है उसके बाहर लिखा हो जब चाहो तब पढ़ने आना, तो कोई जाएगा क्या? स्कूल में लिखा है 8:30 बजे आना है तो 8:30 बजे आना है। कोई भी स्कूल उसमें टाइम नहीं हो तो कोई जाएगा क्या? और बच्चों से पूछो कि कौन सा दिन हफ्ते का सबसे अच्छा है, ये छोटा बैठा ना इसे पूछो तो क्या नाम है इसका, हरे कृष्णा, ये लाला नाम क्या है, आपका नाम क्या है, हाँ इधर आओ क्या नाम है, समर्थ, तुम समर्थ अगत अगोचर, सुनाओ स्कूल जाते हो बेटा, कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है, क्यों, अब पूछो क्यों, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई होमवर्क पूछेगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं, इसलिए तो हम इतने जन्मों से बदमाश हो गए हैं, किसी नियंत्रण में रहना नहीं चाहते, हमारा दिमाग ऐसा खराब हो गया है कि हम किसी नियंत्रण में रहने को तैयार नहीं है, हमारी जान छूटे तो अच्छा है, इसीलिए जब चाहे तब कर लेंगे, उससे भक्ति नहीं होगी। आपको निर्धारित समय टाइम ठीक रखना पड़ेगा। हमारे लिए कोई हॉलीडे नहीं होता है, सभी हॉलीडे होते हैं, एक भी दिन बेकार नहीं है, हमारे पास संडे की छुट्टी नहीं होती, और ज्यादा कार्यक्रम संडे को होते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेचर हमारा ऐसा है, हमारा स्वभाव कई जन्मों से ऐसा हो गया है, और ये बात सिद्ध करता है कि हम भगवान के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इस दुनिया में आके धक्के खा रहे हैं। अभी तक हमारी ये आदत हमारे अंदर से जा नहीं रही है। उतना छोटा बच्चा है, संडे क्यों अच्छा कहता है, ये क्यों नहीं कहता है मंडे अच्छा होता है, मुझे टीचर पढ़ाता है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों नहीं कहता है? क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं कि हम आवारा घूमने को बहुत पसंद करते, कोई हमको पूछने वाला ना हो। हम माँ बाप का घर छोड़ के शादी के बाद दूसरा घर क्यों लेते हैं जोड़े? माँ बाप होगा तो कहेंगे क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, सारा दिन तुम्हें और कोई काम है नहीं, तो कोई डांटेगा तो नियंत्रण नहीं रहेगा, हम आजाद होना चाहते हैं, यही है। और कोई कारण नहीं, एक ही कारण। ये समाज में जितना भी विकार है उसका एक ही कारण है कि हम नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। भगवान के नियंत्रण में रहना चाहिए, वो मालिक है, हम दास हैं। जब से हमने इसका उल्लंघन किया है तब से हम अभी तक इस संसार में हर चीज में इसी एक चीज को लेके करते आ रहे हैं। ये हमारा नेचर है, इसलिए स्कूल में टाइम टेबल जरूरी है और भक्ति में नित्य नेम से बैठकर भगवान का भजन करना जरूरी है। इसलिए लिखा है नित्य। युक्ता का अर्थ होता है सावधानी से लगा रहना, सावधानी भी बहुत जरूरी है। भक्ति में छठे अध्याय में दो शब्द आते हैं, प्रयत्नाद यतमानश्च, प्रयत्न करो और यतन करो, दो शब्द एक समय में कहे भगवान ने। प्रयत्नाद, प्रयत्न करो का मतलब आगे बढ़ने के लिए आपकी प्रयास और कोशिश जारी रहे, और यतन का मतलब क्या है, नीचे गिरने से बचने का हर वक्त सावधानी रखो, दोनों शब्द साथ में। ये छठे अध्याय में आप देखेंगे जहां लिखा है कि योगी अपने पथ से गिरता कब है, श्रद्धयो पेतो योग चलित, योग से विचलित हो गया, अयति, वहां शब्द है अयति, अयतो, यति का मतलब यतनशील जो सावधान है, और अयतो का मतलब जिसने यतन नहीं किया, लापरवाही की तो गिर गया। तो इस बार एक बार गिर गया तो अब दोबारा लापरवाही नहीं करनी है, दोबारा अयतन नहीं होना, यतनशील रहना है। प्रयत्नाद यतमानश्च, तो भक्ति में नित्य युक्ता का अर्थ यह लेना चाहिए सावधानी से, बहुत सावधानी से प्रतिदिन सेवा में लगा रहना चाहिए। मैं आवेश मनोये मम नित्य युक्ता उपासते, उपासते का अर्थ क्या है, उप निकट में, आसते बैठना, भगवान के निकट में बैठना। नित्य सावधानी से भगवान के निकट में बैठना, और निकट में बैठने के लिए मंदिर बना के नेक जरूरत पड़ी है कि रोज आके भगवान के सामने बैठते हैं, इसको बोलते हैं उपासना, निकट में बैठना। उप आसते, उप मतलब नजदीक पास में, आसते मतलब आसन लगाना, भगवान के निकट में आसन लगाना। सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भागवत हो रही थी सुकताल में, मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी ने मेरे को देखा, मुझे कहा इधर आओ मेरे पास नजदीक में बैठो, मेरे को कहा उपासते, मेरे पास आकर बैठो और सावधानी से सुनो। और मैंने वहां से सुनी है, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सनकादि ऋषियों। तो उपासते का मतलब नजदीक आकर बैठो, तो नित्य सावधानी से भगवान के सामने बैठना चाहिए, ये भक्ति है। नित्य सावधानी से भगवान के सामने बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए, श्रद्धया पर्योपेता, कौन सी श्रद्धा, पराश्रद्धा, साधारण श्रद्धा नहीं, परा मतलब पराकाष्ठा, सादी श्रद्धा नहीं, पर्या श्रद्धा। आपको यह आश्चर्य लगेगा, भगवान को जाना जाए और देखा जाए उसको तो युक्त कहते हैं, और बगैर देखे भगवान की भक्ति करें उसको युक्तत्तम कहते हैं। श्रद्धा का मतलब है जो चीज को देखा नहीं है, केवल उसके बारे में शास्त्र में सुना है। पराशरधा का अर्थ है शास्त्र में, वेद में, पुराण में, गुरु के वचन में कहा गया है कि कृष्ण की भक्ति करने से कृष्ण मिलेगा, तो इसके ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये अर्थ है पराशरधा का, श्रद्धाया पर्या। इसके ऊपर शंका नहीं करनी है, पता नहीं भक्ति करने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी श्रद्धा अगर अटल है तो अभी इस वक्त भगवान यहां खड़ा है। हमने बताया था अंग्रेजी में किसी ने पूछा था एक महात्मा से, गॉड इज नोवेयर। उसने मतलब पेपर के लिख के ऊपर लिख के दे दो, लिख के दो गॉड इज नोवेयर, लिखिए गॉड इज नोवेयर। God is nowhere। और W के बाद कामा लगा के महाराज ने बोला अभी जाके पढ़ो, God is now here, God is now here। तुम्हारे को nowhere लगता है, मुझे now here लगता है। ये दोनों की श्रद्धा में अंतर है। तुमको लगता है भगवान नहीं है और मुझे लगता है अभी यहां है। तो श्रद्धा बहुत अटल पराश्रद्धा होनी चाहिए कि वेद का वाक्य, शास्त्र का प्रमाण, गुरु का वाक्य सत्य है, भगवान कृष्ण भक्ति के द्वारा हमें मिलेंगे। इस जन्म में कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं, कोई बात नहीं, मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं। चैतन्य महाप्रभु की 21 घंटे की 10 पहरिया लीला में मुकंदा, मुकंदा का प्रसंग आता है। सबको तो चैतन्य महाप्रभु ने अंदर बुलाया, मुकंद को नहीं बुलाया। श्रीवास ने कहा वो तो बहुत अच्छा गाता है, इसके गाने से तो हमको आनंद आता है कीर्तन करने में, आप इसको बुलाते नहीं। बोला इसको नहीं बुलाऊंगा, ये एक हाथ से मेरे को लड्डू खिलाता, दूसरे हाथ से मुझे लाठी मारता है, मेरी भक्ति करते करते फिर मेरे को निराकार कह देता है, तो मेरे को लाठी भी मारता है और मीठा बोल भी बोलता है, इसको मैं देखूंगा नहीं। शिवनाथ जी बहुत अच्छा है, भक्त है, आप कृपा करो, करुणा कर, जाके बोला वो तो मुकंद आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। बोला पूछो कभी तो मिलेंगे, जाके पूछ क्या। श्रीनाथ जी का श्रीवास आचार्य ने पूछा महाप्रभु दया कीजिए, वो आपका भक्त है, हमें बहुत प्रिय गाने वाला है, कब आपको मिलेंगे वो पूछ रहा है। बोलो हजार जन्म लग जाएंगे, कोटि कोटि जन्म लगेंगे। श्रीनिवास ने बाहर जाके कहा महाप्रभु कहते हैं कोटि जन्मों के बाद। ओ नृत्य करके नाचने लगा, ऐसे झुमनी पाने, ये तो अभी मेरे को मिलेंगे ना, कोटि जन्म कौन सी बड़ी बात है, मिलेंगे तो सही ना, अब मिलने का तो पक्का हो गया ना। इतना उसको विश्वास इस बात के ऊपर आया गया मिलेंगे, हमारा तो 2-4 महीने जप किया अभी तक तो कुछ नहीं मिला प्रभु जी, राम राम करते हरे कृष्ण करते करते गला सूख जाता है, 10 महीने हो गए अभी तो कुछ नहीं मिला। एक हाथी बाबा वृंदावन होते थे, हाथी बाबा उसका नाम था हाथी बाबा, वो कहीं से आ रहे थे तो कोई एक दिल्ली का सेठ गया होगा, एक महात्मा से पूछ रहा था ये आप भजन करते हैं इससे आपको मिलता क्या है। हाथी बाबा पूछता ये बनिया है क्या। हाथी बाबा ने बोला ये बनिया है, ये भी पूछता है भजन से मिलता है क्या, यहां भी इसको क्या मिलता है, लाभ का इच्छा है। बोले ये भजन नहीं करेगा, ये तो दुकानदारी करने आया है, यहाँ भगवान से भी दुकानदारी कर रहा है, क्या मिलेगा। वो मुकंद ऐसे नृत्य करने लगा, महाप्रभु ने कहा मुकंद को ले आओ, और उसी वक्त महाप्रभु ने मुकंदर को अंदर बुला लिया और प्रसन्न होकर कहा मुकंद तुम्हारा जैसा तो मेरा प्रिय कोई भक्त है ही नहीं, तुम जहां गाओगे वहां मैं रहूंगा। तो अटल विश्वास के कारण कोटि जन्म एक क्षण में खत्म हो गए। विश्वास इतना उसका पक्का था कि करोड़ जन्मों की बात उसी मुख से महाप्रभु ने कही थी, उसको एक मिनट भी नहीं बीता था, लेकिन वो बात खत्म हो गई और एकदम वो मुकंद को बुला के अपने चरणों में स्थान दे दिया। बोला तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे गाने से तो मेरा आनंद ही आनंद मिलता है। इतनी इतनी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। ये तो श्रद्धा की आपने एक और भी कथा कहीं सुनी होगी, नारद जाते हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए एक मोची से मिलता है और एक वेद का पाठ करते हुए ब्राह्मण से मिलता है, ये कथा भी श्रद्धा के ऊपर निर्धारित है। वेद पाठी ब्राह्मण के लिए विष्णु भगवान ने कहा कि 100 जन्म के बाद भी इसका उद्धार नहीं होगा, और पेड़ के नीचे बैठे हुए मोचू के लिए कहा ये तो बस इसी जन्म में मेरे पास आएगा। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद को, बोला ऐसे कैसे विष्णु जी कहते हैं आप ठाकुर जी? आप बोला तुम जाओगे तुमसे पूछेंगे ना क्या कर रहा था? बोला हाँ जरूर पूछेंगे। तो बोला वो बोल ना, एक सुई थी उसके छोटे से सुराख के अंदर से हाथी को गुजार रहे थे, बस तुमको पता लग जाएगा। ब्राह्मण ने कहा आइए नारद जी कैसे है वैकुंठ का हाल? बोला आनंद ही आनंद, क्या कर रहे थे विष्णु भगवान? बोला कर क्या रहे थे, सुई के सुराख में से हाथी गुजार रहे थे। बोला झूठ मत बोला करो, नहीं गए तो कोई बात नहीं, नहीं पूछ गए तो अगली बार पूछना, ऐसी बातें क्यों करते झूठ की? नारद ने बोला इसको तो 100 जन्म भी काफी है, तो और ज्यादा लगना चाहिए। और उसको बोला चमार को, भगवान तो हाथी को गुजार रहे थे सुई के सोराख में। बोला क्या कमाल है भगवान का, इसकी महिमा है, ये मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, इतना बीज है उसके अंदर, इतना पेड़ बैठा है बिठा दिया है, तो क्या हाथी गुजर जाए कौन था उसके लिए बड़ा है? बीज में पेड़ को बिठा देता है कि नहीं बिठा देता? तो भगवान का दयालु है, कुछ भी कर सकता है, ये भाव आ गया। तो बोला ये तो बाकी उधार के लायक है, तो ये श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहते। ऐसे इसके उल्टा एक ने पेड़ के नीचे हुए बैठे को कहा रे भगवान ने तो कहा है जिस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म लोगे तब उधार होगा, तब भी नाचने लगा। बोला इतने पत्ते इतने दिनों के बाद भी तो होगा ना, तो इसका मतलब मुझे विश्वास हो गया होगा, बस अब कोई बात नहीं, अब आनंद से कीर्तन करेंगे, अब निश्चित हो गए। तो ये इसको बोलते परा श्रद्धा के भगवान के ऊपर इतनी भक्ति, भक्ति भक्ति है ही श्रद्धा के ऊपर आलिंबन करके चलती है। भक्ति योग अध्याय का शुरुआती श्लोक भी श्रद्धा है, श्रद्धया परोपेतस, और 20वें श्लोक में भी देखो क्या है, ये तु धर्मा अमृतम इदम यथोक्तम परोपास्ते श्रद्धाना मत परमा, वहां भी श्रद्धा है, श्रद्धावान श्रद्धाना। तो दो श्रद्धाओं के शब्द में के बीच में पूरा भक्ति का अध्याय, भक्ति के 12वें अध्याय को दो श्रद्धाओं के बीच में रखा है। तो हमारे को श्रद्धा, और रूप गोस्वामी ने श्रद्धा को पहला अंग कहा है भक्ति की आरंभ का, आदव श्रद्धा, पहले श्रद्धा चाहिए भक्ति में प्रवेश करने के लिए, और ये श्रद्धा पराश्रद्धा होती जाए। परोपासते हम भगवान क्या कहते हैं, मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परोपेत ते में युक्तत्व मता, उनको मैं युक्तत्व मानता हूं, अथवा उनका मैं मत है, मेरा मत ये है, अथवा उनका मैं सम्मान करता हूं सबसे ज्यादा जो ऐसे मेरी भक्ति करते हैं श्रद्धा के स्वार। मेरी मतलब श्री कृष्ण की, भगवान की इस साकार रूप में, श्याम सुंदर रूप में जो भक्ति करते हैं उसको मैं युक्तत्व मानता हूं। अब इस युक्तत्व को और योग वित्त में को 6ठे अध्याय में देख लिए, यही शब्द है। 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अंतर आत्मा श्रद्धावान यो भजते माम समे युक्तत्व मतः। यहां भी श्रद्धावान भजते माम है और वो भी युक्तत्व है, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन उस वक्त भगवान ने अपने आप बोला था, अर्जुन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब अर्जुन प्रश्न पूछ के और फिर सुन रहा है तो उसके मन से कभी भूलेगा नहीं। भगवान ने 6ठे अध्याय के अंतर में यही बात कह दी थी, योग वित्त में वहां शब्द है, युक्तत्व में शब्द है, श्रद्ध वहां भी क्या है, श्रद्ध वहां क्या शब्द है, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम, वहां भी यो है या ये है, वहां यो है, भजते माम मेरा भजन करता है, तेमे युक्तत्मो मत है, उसको मैं युक्तत्म मानता हूं। और ये योग वित्त में वो युक्तम, दोनों का अर्थ एक है, योग और युक्त दोनों का अर्थ एक है। 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक और 12वें अध्याय पूरा अध्याय दोनों का अर्थ एक ही है। इसका अर्थ है भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान कहते हैं मेरा मत है। हरे कृष्ण। तो भगवान भक्ति में तीन बातें समझ में आनी चाहिए। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं, मेरी कमजोरी को भी जानते हैं, मेरे निर्बलता को भी जानते हैं, मेरे दुख सुख को भी जानते हैं। और दूसरा, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो समर्थ है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, और भगवान दयालु है। ये भगवान के प्रति तीन बातें हमारे मन में बैठ जाएं तो हमारी भक्ति अटल हो सकती है। भगवान सब कुछ जानते हैं, वो अनजान तो है नहीं कि हमारा, उसको पता नहीं है हमारा क्या हाल है, और हमारे हाल को सुधारने के लिए वो असमर्थ तो है नहीं, वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, और वो निष्ठुर नहीं, हमें भूलेगा नहीं, वो बड़ा दयामय है, उसकी दया हमारे ऊपर कभी जरूर होगी। तो ये तीन बातों को विश्वास हो जाए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण असमर्थ नहीं, कृष्ण असमर्थ नहीं है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, कृष्ण असमर्थ नहीं, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है और दया का सागर है। तो ये तीन बातें मन में टिका के रखें अगर ठीक तरह, तो भक्ति हमारी आगे बढ़ेगी। तो ये श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि दोनों उपासनाओं में से, साकार और निराकार दोनों उपासनाओं में से, मैं साकार उपासना को सर्वश्रेष्ठ उपासना मानता हूं। लेकिन दोनों उपासनाओं का लक्ष्य मैं ही हूं, दोनों पहुंचेंगे मेरे पास। अब दो श्लोकों में निराकार उपासना का वर्णन करेंगे और फिर कहेंगे ते प्राप्नोति माम एव, वो भी मुझे ही प्राप्त होंगे। लेकिन एक जहाज में चढ़ के आया और एक पैदल चल के आया, बंबई से दिल्ली एक जहाज में आए, एक पैदल आए, तो दोनों में अंतर क्या है? जहाज वाला तो बगैर किसी परिश्रम के, परेशानी के अपने आप आके पहुंच गया, और जो पैदल आया उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन पहुंचा वो भी दिल्ली, टाइम बहुत उसको लग गया। तो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कई जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त करते करते अंत में वासुदेव इति सर्वम इति, मुझे जानता है कि मैं ही सब कुछ हूं श्री कृष्ण, तो उसको वो पैदल चलता है। संसार को क्या बोलते हैं? भवसागर। तो इसको पार करना पड़ेगा ना तैर कर, तो या तो हमको तैरना आना चाहिए, तो ज्ञानी लोग स्वयं तैरने का प्रयास करते, कहते हम अपने योग से, अपने ज्ञान से, वैराग्य से और विवेक से तैर जाएंगे। बोले तैरना नहीं आता है तो कोई तैराकू है उसके साथ पानी में उतरना चाहिए, गुरुजनों का शरण लेके आस्ते आस्ते सीखना चाहिए। बोले तैरना आता नहीं है, तैरना सिखाने वाला कोई नहीं है, बोले तो नाव में चले जाओ, नाव में भी तो पार करना कोई मुश्किल नहीं है। भक्ति नाव है, भक्ति की नाव में भगवान भक्त को बिठा के स्वयं खेवैया बन के नाव चलाते हैं। ये सातवें अध्याय बारहवें अध्याय का सातवां श्लोक है। क्या है सातवें श्लोक में? संसार सागरात भवामी निचरात मैं आवेशित चेतसा समुद्रता, समुद्रता उधार कर देता हूं उसका, संसार सागर से नाव के अंदर बिठा के, और समय नहीं लगता है उसको। मैं तो भक्ति नौका है, भक्ति रूपी नौका के ऊपर भगवान संसार सागर से स्वयं ही भक्त को पार लगाते हैं। कौन से भक्त को? मैं आवेश, जिनका मन भगवान में आवेश है, तो तैरना सीखने की आवश्यकता नहीं। वो पुराने जमाने कहते एक योगी 25 साल हिमालय में रह के नीचे उतरा, बोला तुमने 25 साल में क्या सोखा? बोला पानी के ऊपर चल सकता हूं जैसे आदमी जमीन के ऊपर चलता है। तो एक महात्मा था, चाराने का काम 25 साल में सीख के आया। क्या बोलते हो महाराज? चाराने का काम? बोला हाँ, चाराने नाव में, उस तरफ में चला जाऊंगा, तुम चल के जाओगे, मैं नाव में जाऊंगा, लेकिन जाना तो उधर ही है ना। तो काम तो 25 साल में चाराने जितना काम करके आए, और क्या करके आए हो? तो भगवान के नाव में चढ़ के, और इस नाव का वर्णन देवता करते हैं जब भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं दशम स्कंध के दूसरे अध्याय में, तब पाद पोते न तुम्हारे भगवान आपके चरण कमलों की नौका को ये महात्मा लोग जानते हैं, उसके ऊपर चढ़ के भवसागर को पार करते हैं, तब पाद पोते न तुम्हारे चरण कमलों की नौका के ऊपर ये चढ़ के भवसागर पार करते हैं। तो किसी ने पूछा फिर महाराज वो नौका साथ ले जाते? बोलो नहीं, वो भक्ति रूपी नौका को पीछे छोड़ के जाते हैं कि आने वाले फिर उनको भी पार कर देगी। तो ये भक्ति का मतलब है भगवान, और फिर आपको नाव में भगवान बिठा देगा, फिर भगवान नाव चलाएगा, आप भगवान को देखते रहो और वो नाव चला के संसार से पार कर देंगे। तो ये दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा आज की। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरे और चौथे श्लोक में निराकार का वर्णन है, पांचवे में कष्ट क्या आता है निराकार उपासना में उसका वर्णन है, और फिर भक्ति की बात शुरू हो जाएगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। टाइम हो गया 10:10। किसी का कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। तैयार है, प्रसाद वाले रेडी हैं जी? कैसे? चार बजे की बात नहीं, जैसे भगवान की मंगल आरती पूरे विश्व में 4:30 बजे होते हैं, निर्धारित टाइम रखा हुआ है। थोड़ी भी इसमें कहते नहीं आपको ठीक लगे तो देखे, कोई भी मंदिर टाइम से नहीं खुलता है। आप देख ले, सारे मंदिर तो होंगे मेरे ख्याल में 5,000-4,000 दिल्ली के अंदर, लेकिन हर एक अपने टाइम से खोलेगा। जब महाराज उठेगा तब भगवान उठेगा, और यहाँ भगवान उठता है, हाँ, महाराज के उठने से भगवान उठता है, यहाँ भगवान के उठने से हमको उनसे पहले उठना पड़ता है। भगवान तो उठता है, मैं मालूम है, तैयार बैठा गया, हमको पहले उठना पड़ता है। उठना नहीं पड़ता है, भगवान को जाके उठाना पड़ता है। ये वात्सल्य का भाव है कि भगवान सोए हुए हैं, दास्य भाव है, मालिक है, अब घंटी बजाओ, गान गाओ। हमारे पास ये नहीं है, वल्लभ संप्रदाय में भगवान को उठाने के गीत होते हैं, उठो गोपाला, प्रभात भई है, बाहर बछड़े और ग्वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, मैंने आपके लिए ले जाने का टिफिन तैयार करके रखा है, अब उठ जाओ, उठ के तैयार हो जाओ, और मधुबंगल बाहर इंतजार कर रहा है, श्रीधामा बाहर अंत। बहुत सुंदर पद लिखे हुए हैं भगवान को उठाने के, वो भक्त गाते हैं भाव में कि अब उठो गोपाला उठो, और बड़े सुंदर पद लिखे हुए हैं। तो ये भाव भक्तों के हैं, तो इसलिए नेम बात में कि नेम ऐसे जप का भी, जैसे कोई से आदमी की नाइट ड्यूटी है तो मानो शाम को 4 बजे का मुझे निर्णय, तो 4 बजे मैं बैठूंगा 1 घंटे उसी जगह रोज घर में उसी आसन पे, और वही एक खास कपड़ा मैंने निर्धारित कर गया है वो पहन के घर के अंदर, गृहस्थी के लिए बता रहा हूं, मंदिर में तो कोई बात नहीं, घर में वही जगह कोने में वही स्थान वही आसन वही हमारी वही धोती टंगी हुई पहनूंगा, तब बैठ के जप करूंगा, तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आएगा। ऐसे निर्धारित नहीं, कहीं कभी जाते आते तो ये मन भी इतना ही डामाडोल रहेगा, स्थिरता उसमें भी नहीं आएगा। तो इतनी कम से कम गृहस्थी को घर में एक स्थान के ऊपर स्थिरता पूर्वक समय अपना जो आपको ठीक समय, मैं 6 माला कर सकता हूं सुबह, बाकी मैं शाम को करूं कोई बात नहीं, लेकिन टाइम फिर भी निर्धारित कर लो, अपनी व्यवस्था को देखते हुए निर्धारित कर लो, तो उसमें आप बाध्य हो जाओगे। और भक्ति में ये बंधन बहुत जरूरी है, संख्या पूर्वक नाम गानन, ये गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम गानन का सिद्धांत स्थापित करके गए हैं, गिन के पूरे नाम गाएं। क्यों बोला गिन के? बोला इसलिए कि तुम्हें थोड़ी भी आजादी दी तो एक दिन तो तकलीफ होगी, तो तब तो 1,00,000 जप कर लेगा, फिर तो 3 महीने तक माला को हाथ भी नहीं लगाएगा, ये आदत हमारी ऐसी खराब होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किसी नेम में जीवन को बंधना चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है ना, उसी को कहते हैं डिसाइपल। शिष्य वो है जो जो नियंत्रण में रहे, ये बहुत जरूरी है जीवन में नियंत्रण करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई सुझाव है इसका क्या उत्तर है? 108 मन के क्यों है भाई माला में, बोलो। ये तो नई पुराण हो जाएगी। अच्छा है, ये तो नई पुराण है, माला तो उससे पहले 108 मन की वाली हुआ करती थी। अच्छा है, आपका भाव अच्छा है। किसी का कोई सुझाव है क्यों है 108 मन के? 108 गोपियां हैं, चलो ठीक है, आपका भाव अच्छा है, और बोलिए। किसी का कोई है मन में जिज्ञासा भाव है तो बोलिए। हाँ, नौ, 1+8 9, गणित का बड़े से बड़ा अंग है ये, हो गया ज्योतिष शास्त्र में अंग, ठीक है। और तो फिर तो माला तो हमारी आपके मंदिर से घर तक लंबी हो जाएगी। एक हमारा फकड़ भक्त बोलता था, 9 ग्रह 12 राशियां, 9 12 108, जो करेगा जप उसके सारे ग्रह समाप्त, सब राशियों का उद्धार, उसका ये नया एक फार्मूला था। 9 12 108 बोलता था, 12 9 108 होता ना, तो 9 ग्रह 12 राशियां सब समाप्त, कुछ भी नहीं रहा, भगवान का भक्त बन गया। ये उसकी अपनी पुराण थी, ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी पुराण बनाई। एक खटवांग पुराण होती, सुना है उसको कभी? सुनाएंगे खटवांग पुराण, सुनिए खटवांग पुराण की कथा, सुनिए। चलो कभी सुनाएंगे खटवांग पुराण, नई पुराण बनी थी। बोलिए 108 उपनिषद है, ऐसा भी लोग कहते हैं, गुरुजनों के लिए बोलते हैं 108 स्वामी स्तोत्र सत, 108 शुभ अंग है, 108 गणित के हिसाब से शुभ अंग माना जाता है। लेकिन 108 माला मन के 108 है, लेकिन संत जब काउंट करते हैं जप में तो 100 ही काउंट करते हैं। लाख जप होता है तो 100 के हिसाब से काउंट होते हैं, 8 ऊपर काउंट नहीं होते। जो पंडितों के जप की विधि है उसमें 100 ही काउंट होंगे, 10 मालाएं 1000 मानेंगे, 1000 और 80 नहीं मानेंगे। कोई ठीक नहीं जप आए तो 8 की आपको छूट है, उसमें एडजस्ट करके 100 ही मानेंगे। लेकिन कोई और, आपने तो कोई राय नहीं दी माताजी लोग 108 के विषय में। 8 के पास धागे में एक और थोड़ा अलग करके धागा लगाया हुआ है, 100 अलग है और 8 अलग है, 8 विशेष भगवान। ये तो भाई जो वैष्णव है विशेष रूप से राधा कृष्ण उपास, वो तो गोपियां मानेंगे, लेकिन माला सब में 108 है, वो उसको क्या मानेंगे? तो कोई सार्वजनिक इसका होना चाहिए ना उत्तर। लेकिन सुविधा से जपने के लिए लोगों ने 54 की माला बनाई और 54 से फिर 27 भी बना लिए, छोटी हाथ में पड़ी है, 4 बार जपने से हो जाता है। तो 108 के विषय में आपका कोई राय है क्या? किसी का पूछ रहे हैं क्या फोन करके घर से कि 108 का अर्थ क्या है बेटी? परीक्षा में फोन यूज करना मना है। हरे कृष्णा। तो 108 का अर्थ ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। क्योंकि एक अर्थ है ही नहीं, कई अर्थ पड़े हैं, तो निर्धारित किया किया जाए संख्या से जपने के लिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।